तीनों लोगों में फैला हुआ है, जगत मूर्ति गोपाल की है।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Rama, Rama Ram Hare Hare, Krishna Hare Hare, Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Rama Rama Ram Hare Hare, Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण।
तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद्भागवतम की दशम स्कंध के 24वें अध्याय श्लोक संख्या 12 से लेकर 17 तक हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इस अध्याय का शीर्षक है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में ये 12वां श्लोक है जो यहाँ लिखा हुआ है। और इसके आगे श्लोक की ट्रांसलेशन और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। श्री शुक उवाच
वचो
निशम्य नन्दस्य
तथान्येषां
रजोकसां इन्द्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्रीशुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां रजोकसां इन्द्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्रीशुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां रजौकसां इन्द्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। भगवान केशव हनुमान सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव कृष्ण ने अपने पिता नंद तथा ब्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। मेरे पीछे सुनाइए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव कृष्ण ने अपने पिता नंद तथा ब्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल किसी देवता का अपमान करने की थी, अपितु उस मिथ्या गर्व के पर्वत को ढहा देने की थी जो भगवान के इस शुद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वर्षकोत्सव का शुभारंभ करेंगे और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ इस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक बसे रहने की मनमोहक लीला का आनंद मनाएंगे। इसके बाद अनुवाद पढ़ रहे हैं 17 तक का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। यदि कोई परम नियंता भी हो, है नहीं है इसके बारे में नहीं जानते, यदि कोई परम नियंता भी हो जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्यों के भाग्य को बदल नहीं सकते जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे इस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं असुरों तथा मनुष्यों से युक्त ये संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। क्योंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतएव ये कर्म ही उसका शत्रु मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी उसका गुरु तथा ईश्वर है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोकीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमनामह्यं ददाति त्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साजुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादा सहगन रचिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरूढ़श्च कृपा सिंधुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे कृष्णा वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू ये बहुत ही महान गौड़ीय वैष्णव फेस्टिवल है आज हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस इंडिपेंडेंस डे तो हमारी स्वतंत्रता हमको मिली थी हम लोग स्वतंत्र हुए थे हम लोग 15 अगस्त 1947 झंडा ऊंचा रहे हमारा हरे कृष्णा तो हमारा झंडा काफी काफी उज्ज्वल है बहुत ही अच्छा झंडा है हमारा सब जानते हैं हमारे झंडे में कितने कलर है चार है कोई बात नहीं इंडियन है तो क्या समझ आता है सबसे पहला कलर है सैफ्रॉन दो तरह के सैफ्रॉन लोग होते हैं एक होते हैं कपड़ों से सैफ्रॉन एक होते हैं हृदय से सैफ्रॉन तो सैफ्रॉन कलर है रेनाउंसिएशन वैराग्य का और हम लोग देखते हैं कि भारत की आजादी के बाद वैराग्य में इतनी प्रगति हुई है इतना वैराग्य बढ़ा है हम लोग अभी आ रहे थे मैं और उसी प्रेम प्रभु तो हमने वहां पर ये अब जो कौन सा मॉल है रजौरी के ऊपर तो वहां पर लगी हुई थी एड लगी हुई थी कीप्स यू अलाइव इनसाइड और वो किस चीज की मैं बोल नहीं सकता यहाँ से गाता सुनते ठीक है व्हाट कीप्स यू अलाइव इनसाइड लेकिन ऐसी ऐसी चीजें जो है वो हमें लगता है कि हमें अलाइव या जिंदा रखने वाली है जाहिर होगी थी कुछ अब वो क्या किस चीज का ब्रांड है आई कांट टेल फ्रॉम हियर ठीक है अचीव यू अलाइव फ्रॉम इनसाइड वैसा बुद्धि माना तो समझ गए होंगे वैसे तो रिनाउंसिएशन वैराग्य इसीलिए क्या है हम देखते हैं वैराग्य खूब परिभूत हो रहा है आजकल मॉल्स के रूप में कितने सारे मॉल खुल गए कमाल की बात आ रही है मल की स्पेलिंग और मॉल की स्पेलिंग एक ही है एम ए एल एल तो वैराग्य खूब बड़ा है हमारा रेडी बहुत बहुत वैराग्य बड़ा है वन ब्रह्मचारी मेरे दोस्त हैं उसने उसकी उसको जिद लगी हुई थी कि ना स्मार्टफोन खरीदना स्मार्टफोन खरीदना मैंने कहा प्रभु स्मार्टफोन नहीं खरीदेंगे तो उसके कांग्रेगेशन के वोट क्या बोलेंगे हम जो दान देते हैं ये यहाँ जाते हैं हमारे दान सारे ऐसा नहीं भाई बहुत मन कर रहा है स्मार्टफोन ऐसे उंगली चलाना ना फोन के ऊपर उसका आनंद ही कुछ और है हमारे कांग्रेगेशन डिवोटी क्या है दानी उनका हृदय सैफ्रॉन है उन्होंने कह दिया वैराग्य होने का तो हमारा हमारा ले लो आईफोन खरीद दिया उसको खुश हो गया ये तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई तब तक जो है वैसे ये आईफोन तब तक रहना चाहिए स्मार्टफोन तब तक रहना चाहिए उसकी एक कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि इसके पीछे जो है परमानेंट मार्कर से लिखो महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान ताकि हर बार जब भी मैं स्मार्टफोन उठाऊं तो मुझे पीछे ये भी नजर आया महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान यानी कि मैं आज तक महाप्रभु का भक्त नहीं बन पाया तो ये हमारे वैराग्य की स्थिति है आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई तो ये वैराग्य जो है इसे बिल्कुल खत्म हो गया है गैजेटो मैनिया जिसको बोलते हैं गैजेटो मैनिया पागल बने एक तरह का लेकिन है क्या करें ऐसा डिसाइड किया अगर किसी घर में कोई परचेजिंग अगर होती है तो बच्चे यही बोलते हैं लड़का बोलता है आईपॉड लड़की बोलती है आईपैड माता जी बोलती है आईफोन पिताजी बोलते हैं आईपे तो क्या करें टेक्नोलॉजी ना तो इतना इंद्र चित्र की इतनी सारी अब सुविधाएं हो गई हैं कि जो सैफ्रॉन कर रहे हैं हमारे झंडे के ऊपर उसकी तो खूब हमने खूब सम्मान किया उसका अलग तरह से फिर आता है बीच का कलर शांति और शांति वाकई बहुत बढ़ी है इतनी शांति बढ़ गई है बहुत शांति बढ़ी है 1947 के बाद बहुत शांति बढ़ी डिप्रेशन के केसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़े ज़्यादा कुछ नहीं हुआ लेकिन शांति बढ़ी है डिवोर्स केसेस के लिए 30,000 में एक अलग डिपार्टमेंट खोला गया है ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है और ये रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है एल्प्रेक्स की एक आध कभी अगर नहीं आए तो दो खा लो तो के लेकिन यार शांति तो है ना मन की शांति कभी नींद की गोलियां थी पहले ना प्रगति है इस तरह से तो मन की शांति आज कितनी बढ़ गई हमारे झंडे में जो सफेद कलर है मन की शांति आज कितनी बढ़ गई है आज बहुत बहुत और फिर सबसे नीचे आना है ग्रीन कलर यानी हरियाली हरियाली ये जो कलर है इट इज स्पीसी ऑन एक्सटेंशन ये हरियाली जो है ना अब हरियाली कहाँ है हमें नजर नहीं आती गुड़गांव में चले जाइए एक ऐसा गांव है जिसमें ना तो कुछ गुड़ है ना वहां मिलता गुड़ है ऐसा गांव है वो वहां पर आपको पेड़ नहीं मिलेंगे वहां से कंक्रीट की बिल्डिंग है वहां पर तो इस तरह के जंगल है हमारे पास तो ग्रीनरी खूब बड़ी है और चौथा अशोका चक्र यानी कि प्रोग्रेस प्रोग्रेस भी खूब हुई है, बहुत प्रोग्रेस किया हमने। बाय 2020 द नंबर वन कंट्री फॉर मेंटल इलनेस केसेस इंडिया। अरे वो इतनी जबरदस्त प्रगति, क्राइम में सिर्फ 300% की प्रगति हुई है ना, तो ये काफी प्रगति की हम लोगों ने। और साथ ही आजादी के बाद सिर्फ 5 लाख विलेजेस हैं वो गायब हो गए। इस तरह से 1947 के बाद हमने इस झंडे का नाम खूब रोशन किया है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हाँ सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खुश हैं सब। अच्छा महाराज पूछते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज आप ठीक हो, खुश हो? असल महाराज इसलिए पूछना था कि हम थोड़ा अंदर देखें कि हम ना तो खुश हैं ना हम ठीक हैं, इसलिए महाराज पूछते हैं। और एक आशीर्वाद भी कि तुम ठीक हो, तो अगर ठीक नहीं हो तो मेरी वाणी से तुम ठीक हो जाओ। तो अक्सर जो है वैष्णव पूछ रहे हैं और प्रभु जी ठीक है, तो ठीक है मतलब कि अब आप ठीक हो जाओ उनकी वाणी से, उनके प्रभाव से। तो ये वास्तव में हमारा हाल अभी हो रखा है, जैसे कि 7 लेटर्स बड़े कॉमन है, 7 लेटर्स, जैसे कि रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7, ठीक है। और सुरों में कितने सुर होते हैं? 7, सारे का वहां पादा नहीं, 7 होते हैं। और शादी के वक्त कितनी बार फेरे लेते हैं? माता जी क्यों बोल रही है, पप्पू जी क्यों नहीं बोल रहे? दोनों साथ देते हैं ना, है ना। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो एवरीथिंग इज 7 है ना, एवरीथिंग इज 7। और भगवान कृष्ण का नाम KRISHNA कितना? 7, यस। अब अगर हम ये KRISHNA, ये जो 7 लेटर्स हैं, अगर इसको अपने जीवन में हम ऐड ना करें, तो ना तो ये 7 फेरे हमको सुख देने वाले, ना ये 7 रंग हमको सुख देने वाले, ना ये 7 सुर हमको सुख देने वाले। लेकिन जब ये 7 अक्षरों का नाम कृष्णा जब ये ऐड हो जाता है, तो तब ये जाके आध्यात्मिक हो जाता है, फिर ये 7 रंग हमको सुख देंगे, ये सारे काम पादा निशा हो जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र, और ये 7 फेरे हो जाएंगे, ये आध्यात्मिक गृहस्थ जीवन। तो इसे कृष्ण अगर आते हैं तो जाके सुख आता है। इस तरह से ये जो 3 कलर अगर इसके अंदर है हमारे झंडे के अंदर, ये प्रकृति के 3 गुण बन जाएंगे अगर कृष्ण नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम बोले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इट कैन नॉट बी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इट कैन ओनली बी हैप्पी अगर हम बोले हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस इंडिपेंडेंस डे। पर रियल इंडिपेंडेंस प्रभुपाद जी बोला करते थे, रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। तो आज के दिन हम सब अपनी स्वतंत्रता को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, सबको भगवान श्री कृष्ण श्री राधा राधे रमन जी के चरणों में अर्पित कर दें, दैट इज ट्रू इंडिपेंडेंस डे। नहीं तो ये वैसा ही इंडिपेंडेंस डे, कहीं आए कहीं गए, इट्स अ गुड छुट्टी, थोड़ा आज अलार्म क्लॉक में से सेल निकाल दो, थोड़ा लंबा सो जाओ, कहीं खाने चले जाओ, कुछ थोड़े पकौड़े बना लो, मौसम अच्छा हो गया है, दैट्स इट, इंडिपेंडेंस डे गॉन। ठीक है, रियल इंडिपेंडेंस है टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, एट कृष्ण हम वी डिपेंड ऑन यू, दैट इज ट्रू इंडिपेंडेंस। और यहाँ ब्रजवासी भी हैं, यहाँ गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, तो दे आर शोइंग देयर डिपेंडेंस ऑन इंद्र। तो कृष्ण कह रहे हैं भाई यार ये तो गलत हो गया, कुछ ये तो गड़बड़ हो गया कुछ, दे आर शोइंग डिपेंडेंस ऑन इंद्र। बट टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे मीन्स टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन इंद्र, राइट? नहीं, तो यहां पर इंद्र के ऊपर उन्होंने अपनी डिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, दैट इज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस। तो असली इंडिपेंडेंस, असली स्वतंत्रता है जहां भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हम अपनी स्वतंत्रता को घोषित करते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्म ही सब कुछ है, सब कुछ है वो कर्म ही है, आप क्यों ये इंद्र की पूजा कर रहे हो? इंद्र तब तक आपको रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक आप कुछ करो नहीं, जब तक आपने एक्शन नहीं किया वो रिएक्शन क्या देगा, इसलिए वो भी कर्म के ऊपर आधारित है। सब कुछ कर्म, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, सब कुछ कर्म ही है। तो मत करो शर्म, ओनली डू कर्म। और इसलिए अक्सर लोग गीता भी जो है अक्सर लोग इसमें बताते हैं, गीता में क्या दिया, बस यही है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, 700 श्लोकों से तो ये चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 कर्म करो, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2 कर्म करो, और इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कर्म करो। क्योंकि मतलब बहुत ही आलसी तरीका भगवद गीता ना पढ़ने का, गीता में क्या दिया है कर्म करो, अरे कुछ तो शर्म करो, हैं ऐसी बातें करते हो, कभी गीता पढ़नी नहीं यार, कमाल है। मैंने बहुत बार गीता पढ़ी लेकिन आज तो वो श्लोक मिला नहीं जहां भगवान बोल रहे हैं तू कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। कर्म ही सब कुछ होता है, कर्म ही, कर्म ही। एक चैप्टर है वो कर्म योग करके चैप्टर है, लेकिन वैसे भगवान कहीं नहीं बोल रहे, बस उससे कर्म कर, तो कर्म कर, उससे आगे और ही बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन वो चीज़ हम बताते नहीं। श्री राधा राधे रमन जी की जाए, श्री जगन्नाथ सुब्रमैया की जाए, श्री कृष्ण बलराम की जाए, श्री कौन जाए की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। तो ये जो फिलॉसफी जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा फिलॉसफी। तो षट दर्शन सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है, और प्रभुपाद जी बोला करते थे इफ समवन डज नॉट नो द सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी ही शुड नॉट सिट ऑन व्यासासन। जब मैंने पढ़ा, जब मैंने प्रभुपाद जी का कोड, उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि इससे पहले मैं प्रवचन दिया करता था विदाउट नोइंग सिक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। तो योग्यता तो वैसे और भी कई सारी अयोग्यताएं हैं, मैंने कहा एक अयोग्यता तो कम की जाए कि ये षट दर्शन है क्या। तो षट दर्शन जो है ये छह प्रकार के दर्शन है जो कि अंततः हमको भगवान श्री कृष्ण के पास लेके जाते हैं, पूर्ण पूर्ण रूपेण शरणागति भगवान के देते हैं, और इनको आस्तिक भी बोलते हैं मोटा मोटा। हालांकि सारी फिलॉसफी में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा नहीं होती, जैसे कि हम यहाँ देख रहे कर्म में हमसे फिलॉसफी के अंदर कर्म की बात हो रही है, कर्म ही सब कुछ है, लेकिन असल में एक लैडर है, एक सीढ़ी है। सबसे पहले जो सबसे नीचे की सीढ़ी है उसको बोलते हैं न्याय। तो न्याय जो है षट दर्शन में एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है न्याय। तो इस न्याय जो लैडर है इसमें हम पता करते हैं, इसमें बताया जाता है, इसमें बेसिकली एक लॉजिकल डिबेट शुरू होती है कि भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, प्रकृति कौन है, ये सारी चर्चाएं शुरू होती हैं। एक चर्चा शुरू करने के लिए न्याय। उसके बाद अगली सीढ़ी आती है, उसको बोलते हैं वैशेषिका। वैशेषिका इज द नेक्स्ट सीढ़ी, जिसके अंदर और डिटेल में बताया जाता है कि देखो जो भी तुम्हारे आसपास जो रूप रंग नजर आ रहे हैं, चाहे सुंदर स्त्री या हैंडसम पुरुष या कोई भी सुंदर इमारत, अल्टीमेटली देखा जाए तो सबके सब एटम है और कुछ नहीं है, ये एटम है और कुछ नहीं। इससे भी वैराग्य आता है, अरे यार ये जितना कुछ खूबसूरत दिख रहा है, ये रसीला दिख रहा है जो आसपास, ये सब कुछ क्या है, अल्टीमेटली इज जस्ट एटम। फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है वैशेषिका फिलॉसफी के बाद सांख्य फिलॉसफी, जिसमें बताता है देखो ये सारे कण कण तो हैं, लेकिन इन सारे कणों में कुछ ऐसा भी है जो बड़ा विशेष है, और वो है आत्मा। आत्मा इस भौतिक पदार्थ की जो भौतिक एटम्स है ना, इनके परे है। तो आत्मा अलग है, आध्यात्मिक है, चिन्मय है, और भौतिक पदार्थ जो कि एटम्स के बने हुए हैं इधर उधर आसपास जो हम देख रहे हैं, जो कि एनर्जी है या मैटर है, उससे अलग है ये। तो आत्मा क्या है, चिन्मय क्या है, पदार्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा होती है सांख्य फिलॉसफी में। फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है योगा, पतंजलि का योगा, जिसके द्वारा इस बात का रियलाइजेशन किया जाता है कि देखो मैं आत्मा हूं और मैं इस पदार्थ से अलग हूं, अलग हूं इससे, इस बात का रियलाइजेशन। तो ये होता है योगा फिलॉसफी और पतंजलि। और उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है कर्म मीमांसा फिलॉसफी, जिसके बारे में जो कि आप भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। दिस इज नॉट द हाईएस्ट फिलॉसफी, ये हाईएस्ट फिलॉसफी नहीं है, लेकिन कर्म मीमांसा फिलॉसफी का उद्देश्य होता है कि किसी तरह किसी तरह से रिचुअलिस्टिकली ही, रिचुअलिस्टिकली सही, लेकिन लोगों को धर्म कर्म में लगाया जाए, जैसे कि हवन यज्ञ हो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो किसी तरह से रिचुअलिस्टिक के लिए सही लेकिन लगाया जाए। कर्म मीमांसा फिलॉसफी, कर्म सबसे ऊपर है, कर्मों को शुद्ध करना है, कर्म मीमांसा फिलॉसफी। इसके ऊपर जो हाईएस्ट फिलॉसफी आती है वो है वेदांत, वेदांत फिलॉसफी, जो कि श्री वेदव्यास जी ने दिया। और वेदांत का भी जो कल्बिनेशन है, जो उसका टॉप मोस्ट है, जो उसका अल्टीमेट कंक्लूजन है, वो है भक्ति वेदांत का। और भक्ति वेदांत देने वाले हैं हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो इस तरह से ये लैडर है वास्तव में, और इसमें एक लैडर को भगवान लेके चल रहे हैं, अल्टीमेट फिलॉसफी दे रहे हैं, जबकि परम भगवान है, जबकि परम भगवान है, लेकिन यहाँ पर ये फिलॉसफी से लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर्पस कुछ और है, यहाँ पर्पस कुछ और है। इसीलिए हमको कभी भी ना चीजों को फेस वैल्यू पर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ देखें भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक ऐसी फिलॉसफी बता रहे हैं जिसमें कि भक्ति नहीं है, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कर्म सबसे ऊपर है, इवन कर्म ही ईश्वर है। और भगवद गीता बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बोलना चाहिए सर्व धर्मान परित्यज्य कर्म एकम शरणम व्रज, तो बोले माम एकम शरणम व्रज, वहां कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर्पस कुछ और है। तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि चीजों के पीछे पर्पस क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है। ऐसे कभी कभी अगर हमें सीनियर डिवोटीज डांट देते हैं तो हम ये देखते हैं उसके पीछे पर्पस क्या देते हैं, हमारा अपमान हो गया, पब्लिक में थोड़ी डांट देना होता है हमको, ऐसे डांट दिया, अरे हमारे में भी कोई स्वाभिमान है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होती, ईगो होती है बेसिकली। वो ईगो को हम लोग एक पॉलिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। पर फेस वैल्यू पे जज किया तो गए, फेस वैल्यू पे जज किया तो गए। तो कभी भी जब फेस वैल्यू पर जज नहीं कर रहे, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भले यहाँ पर कर्म मीमांसा फिलोसफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ और है। तो इसीलिए हमेशा हमेशा हमको जो है उद्देश्य को देखना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। अगर हम उद्देश्य को नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग गलत कंक्लूजन में पहुंचेंगे। जैसे कि एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, उनको प्रभुपाद जी ने बोला आप ना लेक्चर दो, यहाँ पर कई बुद्धिजीवी आए हुए हैं, वैज्ञानिक आए हुए हैं, फिलोसफर्स आए हुए हैं, तो उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन दी, बड़ी वैज्ञानिक बड़ी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है यू नो एटम थे, मॉलिक्यूल्स थे, न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे और स्पिरिटॉन भी था उसके अंदर, और इस तरह से उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। तो भक्त ने कहा प्रभुपाद कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ये कोई प्रवचन था, ये कोई लेक्चर था जिसमें कोई जिसमें कृष्ण थे ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी ने कहा यह बहुत जरूरी है कि हम भी कोई ऐसी चीज बताएं जो कि लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आती ना तो लगता है ये कुछ हाईफाई है यार, ये कुछ बढ़िया वाली चीज है, अगर आसानी समझ में आ गई तो क्या बड़ी बात। तो क्या इसलिए भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को प्रभुपाद ने बोला आप ऐसा लेक्चर दो भले ही किसी को समझ में आए। देखो साइंटिस्ट जो बोलते हैं किसी को समझ में आता है, साइंटिस्टों को खुद को समझ में नहीं आता वो क्या क्या बोलते हैं, तो उनको क्या खास समझ में आएगा जो सुनते हैं। तो इसीलिए उनको रिफ्यूट करने के लिए भी कभी कभी ऐसी बात बोली जाती है जो कि सर्दियों पर निकल जाते हैं, अरे देखो यार क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस तो साइंटिफिक समझ में ही नहीं आई लेकिन है बहुत तो फेस वैल्यू में देखा जाए तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का जो लेक्चर था उसको बोले यार कृष्ण है नहीं उसके अंदर, लेकिन उसके पीछे पर्पज ये था टू की ब्रांडिंग करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस की ब्रांडिंग करना। अब जैसे कि जब 70s में जब मूवी आई हरे कृष्णा हरे राम, दम मर दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, तो उस वक्त तो भाई सबने सब तो जितने डिवोटी से बहुत तंग हो, उन्होंने कहा देखो हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट ही कैसे बेइज्जती कर रहा है ये देवानंद नाम का व्यक्ति जिसने मूवी बनाई है, उसके अंदर दिखा रहे हैं कि हम लोग एलएसडी मैरिजुआना लेते हैं, दम मारो दम और हम लोग जो है हरे कृष्णा इतना ये हरे कृष्णा डिवोटी, अरे हम लोग चाय कॉफी तक नहीं पीते और इसने क्या क्या दिखा दिया, एलएसडी मैरिजुआना पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। हाँ फेस वैल्यू भी देखा जाती है कोर्स, और रोबा जी ने जाकर शिकायत की, रोबा जी ने कहा देखो वेदर पॉजिटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। तो भाई देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार उसको फेमस करना है ना, अगर फेमस करना है अगर तो कभी कभी ऐसा भी होता है नो? तो रोबा जी ने कहा डोंट वरी अल्टीमेटली ओनली हरे कृष्णा विल स्टे, और हुआ भी ऐसा ही। 70s में जो है सब लोग चढ़ाया करते थे भक्तों को, ए दम मार दम, ए दम मार दम मिट जाएगा, यह चढ़ाया करते थे। 80s का समय आया, 80s में आया ए दम मार दम हरे कृष्णा हरे राम, ए दम मार दम हरे कृष्णा हरे राम। 80s 90s में हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाल जी कहा था ओनली दिस हरे कृष्णा विल से दम मार दम विल गो अवे, और वाकई में दम मार दम का दम निकल गया। आज कौन में चला था दम मारो दम, कोई नहीं चला था, लेकिन 70s और 80s का समय था बस जैसे। तो इसीलिए कभी भी फेस वैल्यू जज करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअली अंदर जाके देखें बहुत कुछ है। ऐसे हमारे रशिया में जब बात छिड़ी की ये जो इस्कॉन की हरे कृष्णा वालों की जो भगवद गीता है ये जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर है, इससे लड़ाइयां बढ़ेंगी, इसमें हर जगह पर जो है एक व्यक्ति बोले जा रहा बार बार लड़ो आलस्य त्यागो लड़ो, स्वामित्व की भावना त्यागो लड़ो, आसक्ति त्यागो लड़ो लड़ो लड़ो, अरे इतनी वॉयलेंस यार इतनी वॉयलेंस। तो भक्तों ने उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसे किया कि ये वही भगवद गीता जो बैन होगी ना ये वही कॉन्ट्रोवर्शियल भगवद गीता, अरे दो दे यार बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया नो? तो इसीलिए फेस वैल्यू पे जज करेंगे तो हम लोग अफकोर्स बात आएंगे। अब देखिए अब ऐसी यहां भगवान बोल रहे हैं कर्म मीमांसा फिलॉसफी, अभी 7th कैंटो आपके यहां चली रहा है, हिरण्यकशिपु ऐसी फिलॉसफी बोलना लग रहा है तो भक्त है यार, एब्सोल्यूट ट्रूथ यू आर द एब्सोल्यूट ट्रूथ द सोर्स ऑफ दिस द सोर्स ऑफ दैट द कंट्रोलर ऑनली, एकदम लगता है 7 डे सेशन का तो पूरा वही चल रहा है एकदम। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे पर्पज क्या है, चापलूसी, ब्रह्मा जी की चापलूसी करनी है ताकि शक्तियां मिल जाए, दैट्स इट, पर्पज ही गड़बड़ है। भले ही फिलॉसफी ऊपर से सही बोल रहा है वो, यहां पर फिलॉसफी गड़बड़ चल रही है सारी, भगवान कृष्ण कर्म ही मानता फिलोसफी बोल रहे लेकिन पर्पस क्या है अल्टीमेटली। बहुत सारे पर्पस भगवान ने इसमें सॉल्व किए, एक सबसे पहला पर्पस भगवान श्री कृष्ण ने सॉल्व किया वो है इंद्र का अहंकार तोड़ना। इंद्र का अहंकार वो भी पर्वत के समान, भगवान ने कहा ठीक है लोहे को लोहे से काटते हैं, जहर को जहर से काटते हैं, पर्वत को पर्वत से काटेंगे। तो अहंकार के पर्वत को गोवर्धन पर्वत से काट दिया। कृष्णा इज वेरी ट्रिकी गॉड। तीसरे भगवान जो बड़े फैशनेबल हैं, बड़े रंगीले हैं भगवान, इज अ ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड है ना। तीसरे भगवान जो करते हैं बड़े स्टाइल में करते हैं, वट एवर कृष्णा डज इट्स इन स्टाइल है ना। गोवर्धन भी उठाया तो ऐसे नहीं किया, ऐसे उठा दिया। अरे त्रिभंग ललित में है, ऐसे घूमते फिर उठाया हुआ है, और बीच से क्या थोड़ा हिला डुला भी देते हैं। स्टाइल है, कृष्णा इज वेरी स्टाइलिश गॉड, वेरी वेरी स्टाइलिश। इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं भले ही भगवान ऐसा किया, लेकिन उसका पर्पस अल्टीमेटली एक तो था, पहला सबसे बड़ा कारण था वो था इंद्र का अहंकार तोड़ना। बहुत जरूरी, क्योंकि भगवान को ना अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे किसी भक्त के अंदर अहंकार आता है, प्राइड आती है, भगवान कहते हैं इसका देखो, इसको तुरंत आईसीयू में लेके जाओ, इसका ऑपरेशन करना है। आईसीयू बोले तो माया देवी, उसमें फिर भगवान ऑपरेशन करते हैं उसका। बड़ा फेमस है, खूब सारी उसने फंड रेजिंग की है, बड़ा विख्यात कथावाचक है, एक जगह गया किसी ने माला तक नहीं बनाई उसको। ही इज जस्ट पार्ट ऑफ द क्राउड, प्रसादम नहीं पूछा। हाँ मेरे को प्रसाद ही पूछा, एक्सक्यूज मी भगवान को, लेकिन ये चीज पसंद नहीं ना, क्या करते कहीं ना कहीं तो पंचर मारेंगे हमारे मन, प्राइड रहती पंचर मारना है तो करेंगे करेंगे पंचर। क्योंकि शुद्ध भक्ति में जाने के लिए जो छेद है, उस छेद का साइज है, उस छेद का साइज है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। इसके साथ कुछ और चीज अगर चिपकी हुई हुई तो कैसे जाएगा अंदर, है ना, आत्मा कैसे निकलेगी, छेद में से कैसे निकलेगी। छेद का ये जो छेद है, जो शुद्ध ये जो आध्यात्मिक जीवन में जगह ज्यादा हमें, इस छेद का साइज है, और छेद का साइज कितना, टिप ऑफ द हेयर का 10,000वां हिस्सा, बोले तो आत्मा का साइज, यानी कि आत्मा के साथ कुछ और अगर चिपकी हुई है, प्राइड चिपकी हुई है, लक्ष्य चिपकी हुई है, तो क्या उसका साइज बड़ा हो गया ना, वो कैसे निकलेगी, ठुक ठुक नहीं निकल पा रही, ठुक प्राइड चुकी हुई, अरे प्राइड चुकी हुई, अब क्या करें, अरे प्राइड तो काटनी पड़ेगी फिर ना, जब प्राइड कट जाएगी तब फट जाएगा, तो फिर कहते हैं शुद्ध आत्मा, फिर क्या है कि शुद्ध में शुद्ध धरातल पे प्रवेश कर सकती है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकती है, लेकिन क्या नहीं तो अटकी रहेगी है ना। भगवान को इससे प्राइड बिल्कुल पसंद नहीं, अरे ये तो एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट भाव है भक्ति का, एकदम ऑपोजिट भाव है भाई, ये तो प्राइड बिल्कुल पसंद नहीं भगवान को। तो भगवान इसको पंचर जरूर करते हैं, पंचर जरूर करते हैं। इसे आप देखें हमारे वैष्णव समाज में झुकना इज वेरी कॉमन, पंच तत्व प्रणाम करेंगे है ना, पंच पंचांग प्रणाम करेंगे या साष्टांग प्रणाम करेंगे, लेकिन झुकना बहुत जरूरी है। लेकिन हम झुक क्यों नहीं पाते, अक्सर हम झुकते नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ना एक व्यक्ति क्यों नहीं झुक पाएगा, थोड़ा सा अगर ग्रॉस लेवल पर देखें, अगर ना किसी की रीढ़ की हड्डी के अंदर स्टील की रॉड डाल दी जाए, ठीक है, प्रभु झुको, नहीं झुक पाएगा वो, नहीं झुको ना, नहीं झुक पाएगा वो, क्यों, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्टील की रॉड डली हुई है, और स्टील की रॉड है प्राइड, अहंकार है ना। तो इसे जब तक ये प्राइड रहती है ना, तब तक भगवान कहते हैं यार ये तो ना, ये तो अभी ठीक नहीं हो रखा, ये तो बेचारे को कैंसर हो रखा है इसको, तो इसकी तो रॉड डली हुई है इसकी रीढ़ की हड्डी में, ये तो जब ऐसे झुक नहीं पा रहा है। नहीं, जितना ज्यादा हम झुकते हैं उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए ये जो अहंकार है इसको बढ़ाने के लिए झुकना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस चीज को गिराना हो, जैसे कि अगर ये सब चीज मेरे रखी हुई है, इसको गिराने का बेहतरीन तरीका है मैं रुकुल कृष्ण के पास जाऊँ, बोलो प्रभु जी बांध सा, ये गिर गई है, अपने आप गिर गई है ना, जो चीज अगर सत्य रखी हुई है अगर हम झुक जाते हैं तो गिर जाती है ऐसी। तो इस तरह से अहंकार भी सत्य रखा हुआ है, इसका भी पर्वत हमने रखा हुआ है सर के ऊपर, कैसे गिराए, हिलती भी नहीं होता, नहीं होता है इसको, सिर्फ गिराने का एक ही तरीका है, झुक जाओ, जब झुक जाते हैं तो गिर जाती है, तो ये प्राइड गिर जाती है, तो प्राइड भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। तो देखा अरे इंद्र के अंदर क्या हो गया, प्राइड आ गई और तोड़ना पड़ेगा इसको, तो भगवान ने उसके साथ तो ये लीला की जिसमें कोई प्राइड को तोड़ा। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था कि कितना किसी प्रकार से भक्तों को अपने पास लाया जाए, बिकॉज कृष्णा इज एडिक्टेड टू हिज डिवोटीज, उनको ना भक्तों का नशा है, बिना भक्तों के भगवान कृष्ण कभी होते नहीं थे, जब भी आते हैं भक्तों के साथ ही आते हैं, विशेष रूप से जब वो स्वयं आते हैं तो अकेले कभी भी नहीं आते। एक बार एक भक्त ने सोचा मैं ना बड़ी एलिवेटेड एक ड्राइंग बनाता हूँ, एक पेंटिंग बनाता हूँ, तो उसने ना भगवान श्री कृष्ण की ना पत्थर बैठे हुए हैं और ऐसे करके हैं, तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोलेंगे नो यू हैव मेड सच अ नाइस पेंटिंग, कृष्ण इज फीलिंग सेपरेशन। उसने तो ये एक्सपेक्ट किया, प्रभुपाद जी ऐसे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, मतलब बड़ी गहरी ड्राइंग बनाई तुमने, प्रभुपाद जी ने बोले इस कृष्ण हैविंग सम हेडेक, ऐसे बैठे हेडेक। फिर प्रभुपाद ने कहा व्हाई इज हाउ ही इज हैविंग हेडेक बिकॉज देयर इज नो डिवोटी, ऐसा कोई भक्ति नहीं है, चट्टान के ऊपर भगवान बैठे हैं ऐसे बैठे तो हाउ ही मस्ट बी हैविंग हेडेक। तो उसके बाद प्रभु तो भक्त को लगा यार तो गड़बड़ कर दी मैंने, तो इसे गए और उसने क्या वो पेंटिंग बना के, पेंटिंग में उसने बनाया एक ना एक जो राधा रानी है उसने राधा रानी बनाई, उसमें क्या है वो हार लेके जा रही है कृष्ण की ओर। तो प्रभुपाद जी ने कहा इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई राधा रानी इज ब्रिंगिंग दिस गार्डन महाप्रसाद फॉर यू। एक बार तो भक्तों ने डायोरामा बनाया, तो डायोरामा था तो डायोरामा में ना क्या हुआ वो था भगवद्गीता का जो डायोरामा था वो था, तो उसमें घोड़े भी बने हुए हैं और कृष्ण भी हैं अर्जुन भी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते प्रभुपाद दिस इज कृष्णा स्पीकिंग भगवद्गीता टू अर्जुन। प्रभुपाद जी का नाइस डायोरामा। प्रभुपाद जी का देखिए मैं देख रहा हूँ इसमें ना घोड़े जो है कृष्ण से ज्यादा सुंदर बनाए तुमने, घोड़े कृष्ण से ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। अभी तो बहुत ही एम्बैरस हो गए हैं, तो वाकई में घोड़े हमने ज्यादा सुंदर बना दिए, कृष्ण इतना सुंदर है नहीं घोड़े ज्यादा सुंदर है, तो बड़ी शर्म हो गई है। तो यार हमने प्रभुपाद जी को खुश करना था ये तो एम्बैरसमेंट हो गई। प्रभुपाद जी का एनी वे बिकॉज दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा दैट्स व्हाई दे आर मोर ब्यूटीफुल देन कृष्णा। प्रभुपाद जी को चला रहे हैं ठीक है पर कृष्ण जो है ही इज एडिक्टेड टू हिज डिवोटीज, इसीलिए भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों का गुणगान करते हैं उनका सानिध्य चाहते हैं भगवान, ही इज ऑलवेज डिमांडिंग द एसोसिएशन ऑफ हिज डिवोटीज। जैसे कि साउथ इंडिया में दो विग्रह हैं, एक नाम है भरतराज जी एक नाम है बालाजी, सॉरी श्री रंगनाथ जी और भरतराज जी ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो है विष्णु राइट, दोनों भगवत तत्व लेकिन रामानुजाचार्य जी का संग पाने के लिए दोनों के दोनों ललायत रहते हैं। तो भरतराज जी को लेटर लिखते हैं रंगनाथ जी इज कृष्णा, रंगनाथ जी वो है जिन्होंने भगवान श्री राम को जो है चलना सिखाया, ऐसे ठुमक चलत रामचंद्र बट माई डियर ये ठुमक चलत रामचंद्र भगवान श्री राम को चलना ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में चलना रंगनाथ जी ने सिखाया। तो रंगनाथ जी जो है वो रामानुजाचार्य जी का संग चाहते हैं, तो लेटर लिखते हैं मेरे प्रिय अवतार वरदराज तुरंत जितनी जल्दी हो सके रामानुजाचार्य को मेरे पास भेज दो, मैं उनके संग के लिए लड़ाया हूं, तुम्हारा मूल रूप रंगनाथ। वरदराज जी ने उनको लेटर लिखा भूल जाओ रामानुजाचार्य मेरे पास ही रहेंगे मुझे बहुत प्रिय हैं, आपका विस्तार वरदराज। रंगनाथ जी ने फिर लेटर लिखा ए मेरे प्रिय विस्तार मुझको भी रामानुजाचार्य का संग पसंद है, थोड़ी तुमने सेवा कराइए भले ही दो महीने अपने पास रखो, दो महीने बाद भेज देना ठीक है, एक हफ्ते के लिए सही कुछ समय के लिए भेज दो। वरदराज जी ने वापस लिखा सोच के बताऊंगा और फिर उन्होंने दो महीने बाद भेज दिया चलो रामानुजाचार्य वहां यहां भरा रंगनाथ जी के पास भी हुआ। तब रंगनाथ जी के पास आ गए, रंगनाथ जी ने वापस लेटर लिखा वरदराज जी को भूल जाओ। तो भगवान भी अपने भक्तों के संग के लिए ललायत रहते हैं, तो कृष्ण जो है वो ललायत है, वो चाहते हैं कि ना ये गोवर्धन लीला होगी तो क्या होगा सारे सारे ब्रजवासी पास में आ जाएंगे और सबके सब पास 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 में आएंगे, तो कृष्ण जो है तो कृष्ण वाज हैप्पी इन अ वे कि अच्छा है ना ये क्या है ये गोवर्धन लीला होगी इसी बहाने सारे सारे ब्रजवासी अब यहाँ मेरे आस पास यहाँ तो सारे ब्रज में फैले होते हैं लेकिन अभी क्या सब पास 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 आ गए। तो इसलिए जो कृष्ण है वो यही चाहते हैं कि भक्त जो है हमेशा उनके साथ बने रहें। अब जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही कभी भक्ति मन में आता है यार इतना पॉप दिस हरे कृष्णा बहुत होगी ये 16 वाला कुछ नहीं होता इससे भैया कुछ नहीं होता मैं जा रहा हूँ मैं वापस मैं यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के आया मैं अपनी कोका कोला छोड़ के आया मैं अपना पिज्जा हट छोड़ के आया यार क्या यार रखा है सबके अंदर हरे कृष्णा के अंदर मैं जा रहा हूँ वापस पर गलती कर दी उसने गलत जगह आ गया वो। फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है ये था ये अंडरवर्ल्ड की तरह है अंडरवर्ल्ड क्या होता है कि ना ये वन वे है अंडरवर्ल्ड में एक बार अगर आप घुस गए तो अंडरवर्ल्ड तो वापस नहीं जाते अब मैं शरीफ आदमी बन के रहूंगा ना भूल जाओ। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है ये तो अंडरवर्ल्ड है असल में इसमें आप घुस सकते हैं वापस नहीं जा सकते आप कितना जोर लगा लो कि यार इतना प्यार मैं छोड़ रहा हूं ये माला वाला ले लो मैं जा रहा हूं इंद्र तृप्ति करने के लिए जा रहा हूं मैं और मैं हर वो चीज करूंगा जो मैंने प्लान बनाई थी मैंने हर वो चीज करूंगा मैं ये नहीं सोचूंगा क्या पाप क्या पुण्य क्या मैं कुछ नहीं देखूंगा मैं बस आई एंजॉय करके देखता है, सब फ्रस्ट्रेशन मारेंगे देखता है, एक एक कदम पे फ्रस्ट्रेशन मारेंगे भगवान। ऐसे एक लड़के एक देखते ऐसी वही भक्त था, उसकी बहुत इच्छा थी कि ना बहुत अच्छा है, एक सुंदर लड़की से शादी हो जाए, एक सुंदर लड़की मिल जाए बस। अपना क्या है यार, मैं सोचा हुआ था कि मैं इतना हैंडसम हूँ, एक सुंदर लड़की से शादी होनी चाहिए। मैंने पूछा, बोले भगवान मैंने जितनी भक्ति की है ना उसका रिजल्ट मैं आज ही मांग रहा हूँ, एक सुंदर लड़की से शादी करा दो मेरी पास। हो गया तथास्तु, हो गया। भगवान ने कहा बेटा तुम भक्ति की तथास्तु होगा, बस मैं अच्छे से भोग करूंगा ना, आई एंजॉय। वो उसने सुंदर लड़की से शादी कर ली। अब हुआ क्या, उसको बाद में पता लगा इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं लड़की के। तो अक्सर कई बार वो फ्रस्ट्रेट होता है, जितना उसकी रोमांटिक फीलिंग है उसी वक्त उसको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे उसको। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, ये तो देखो ये तो माफिया है, ये तो क्या है, ये तो अंडरवर्ल्ड है, इसमें आप घुस सकते हैं इसके अंदर, इसमें वापस जाते हैं। एक बार आप कृष्ण के साथ जुड़ गए तो ये तो पॉजिटिव लवर, इनको अपने भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार अगर आपने रजिस्टर कर लिया डिस्कवरी और सेल्फ कोर्स के अंदर, जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी कोर्स के अंदर, आई एम सॉरी फिर आप नहीं जा सकते। कृष्ण फिर अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, ही इज अ पॉजिटिव लवर, वेरी पॉजिटिव लवर। कोई प्यार किया है चोरी नहीं की। तो कृष्ण जो है अपने भक्तों को छोड़ देने, भक्त बड़े छोड़ने की कोशिश करें। तो कृष्णा इज एडिक्टेड टू हिज डिवोटीज, इनको अपने भक्त बहुत ज्यादा पसंद है, इनको नशा है अपने भक्तों का। तो इसीलिए ये भक्तों को जो है आपके पास ही रहना चाहते हैं। तो ये एक और कारण था। अच्छा ये लीला हो गई, इस लीला के कारण अब कृष्ण को बार बार, अब कृष्ण जो है सारे बजवाती को देख पा रहे हैं, उनका सानिध्य ले पा रहे हैं, कृष्ण वॉज वेरी हैप्पी। और एक और कारण जो था वो ये था कि भगवान ये प्रस्तुत करना चाहते थे कि देवी देवताओं की पूजा के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। अभी इंद्र के पास जा रहे हैं, अब हैं भगवान के पास चले सब, लेकिन लीला के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं कि भाई ये बारिश तो होती है इंद्र देवता की वजह से होती है, देवता की बात। तो यहां पर देवी देवताओं के पास जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे क्यों देवी देवताओं के पास जाते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणं व्रजन, अरे फिर मेरे पास आओ ना। तो जो देवी देवताओं की पूजा उपासना करने वाले होते हैं इनकी भी ऐसी, वास्तव में देखा जाए ना देवी देवताओं को भक्त होता नहीं है वैसे, ये जो मिस नॉर्मल है ये अपने आप में टर्म ही गलत है। देवी देवता का भक्त, देवी देवता कोई भक्त नहीं होता, देवी देवताओं के सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं और कुछ नहीं है। जैसे दीपावली के दिन, दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, और लक्ष्मी नारायण की पत्नी, गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र, दोनों में क्या कनेक्शन, मामा भांजी चाचा चाची फूफा फूफी, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन भाई देखो हमको कोई लेना देना नहीं, दिवाली के दिन क्या हुआ था, सर दिवाली के दिन क्या हुआ था पता नहीं आ रही हमको, नहीं पता हमको। देख लाइफ में दो चीजें चाहिए, एक रोकड़ा, दूसरा लाइफ बिंदा। रोकड़ा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा भाई, पैसा कौन देता है, लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी को लेके आओ, लक्ष्मी को लेके आओ, ठीक है। और लाइफ एकदम बढ़िया रहे यार, एकदम मंगलमय जीवन, गुड लक जीवन, गुड लक कौन देता है, गलत गप्पा मोरिया है, बस बस ठीक है। सर सर वो सीताराम सर वो वापस आए थे अयोध्या सर लंका, अरे यार क्या काम पूरा करो ना, हमको दो चीजें चाहिए लाइफ के अंदर, पैसा चाहिए, हमको मंगलकारी जीवन चाहिए ना, मंगलमय जीवन, बस इसके लिए तो ये दोनों काफी मन है। देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, ओ स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। गणपति बप्पा मोर दिया, मोरिया नहीं मोर दिया, और देना तेरी प्लेट में इतने लड्डू रखे हैं, कुछ लड्डू मेरे को देना। गणपति बप्पा मोर दिया, मोर दिया, और दे, और दे, गणपति बप्पा मोर दिया। एक बार क्या, एक बार हिंदू मुसलमान और एक क्रिश्चियन दोनों तीन लोग ये नाव पे थे, अरे नाव में थे, तो फिर नाव देखा नाव, नाव में छेद है, नाव तो डूब रही है, आप क्या करें। तो क्रिश्चियन ने कहा जीसस क्राइस्ट यू आर माई सेवियर, जीसस क्राइस्ट आए बचा लिया उसको। उसका मुसलमान ने बोला अल्लाह मैं तेरा बंदा, अल्लाह ताला आए उसको बचा के ले गए। अब ये जो हिंदू था इसने बोला गणपति अप्पा मुझको बचा ले बप्पा, डूब गया। अरे गणपति अप्पा ऐसा क्यों किया हमने मेरे साथ, मैंने आपसे प्रार्थना की थी मेरे को बचा लो, आपने मेरे को बचाया नहीं। कौन तो गणपति अप्पा है? मैंने कहा हर साल तू मेरे को समुद्र में डूबता है, एक बार तो मेरा भी डूबना। तो डेमिगॉड वैसे तो यही है। तो देख देता हूँ कि वो बात सही होते हैं, इनको अपने इनको बस काम से होता है, काम पूरा होना चाहिए। जो भगवान बोल रहे हैं यार ये डेमिगॉड वस्तु के चक्कर में क्यों पड़ते हो, वहां क्यों पड़ते हो इनके चक्रों में? तो इसीलिए ये कर्म, ये तो भगवान यहाँ पर कर्म के बारे में ऐसे बोल रहे हैं ये कि ताकि जो अल्टीमेटली डिवोटीज के पास जब उनके पास आ जाए हाँ, और इंद्र का अहंकार तोड़ दिया जाए, और उसके बाद बहुत जरूरी है कि डेमिगॉड वर्शिप इसको इसका खंडन किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग सिद्धांत ऐसे नहीं है, लेकिन वास्तव में सारे सिद्धांत अल्टीमेटली कहाँ लेके जाते हैं हमें, भगवान श्री कृष्ण की ओर। तो जो सारे सिद्धांत का जो निष्कर्ष है वो ये है कि इकलौती शरण अगर हम किसी की जाएं तो वह भगवान श्री कृष्ण। और हम यहाँ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अलग अलग आर्गूमेंट दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग आर्गूमेंट देने के पीछे पर्पज क्या है कि सारे डिवोटीज अल्टीमेटली उनकी शरण में आए। और कृष्ण इस तरह से हमारे फेस की टेस्टिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रजवासी के फेस की टेस्टिंग कर रहे हैं, और ब्रजवासी इस फेस की टेस्टिंग में पास हुए। अदरवाइज किसी देवी देवता को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये मेरी देवी ये मेरा देवता छोड़ना बड़ा कठिन होता है, लोग उसको नहीं छोड़ पाते। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम भले इंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं ना इसीलिए हम लोग जो कृष्ण कह रहे हैं वो करेंगे। तो इस तरह से भगवान भी हमारी परीक्षा लेंगे, हमारे फेस की परीक्षा लेंगे कि क्या तुम वाकई मेरे प्रति समर्पित हो। हो सकता है अगर तुम्हें सोल्यूशन किसी और से मिले बेटर सोल्यूशन मिल जाएगा, किसी और अगर तुम करो ओम केतवाय नमः, ओम केतवाय नमः, ओम राहुआय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इससे शायद जल्दी सोल्यूशन निकल आए। मेरी शरण में आके पता नहीं मिले ना मिले यू नो, तो किसी ग्रह किसी अपने अगर ग्रह का शमन करना है तो बढ़िया रहेगा ना, तुम वही करो मेरी शरण में। तो कृष्णा विल ऑलवेज टेस्ट आवर फेथ, और भक्तों का ये फेथ की परीक्षा लेते हैं भगवान, बिल्कुल लेते हैं। जैसे कि अक्सर ये एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स अ हॉट टॉपिक एस्ट्रोलॉजी, तो अक्सर कभी कभी भक्तों को बड़ी उत्साह हुई है एस्ट्रोलॉजी में हमारा चार्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए। अच्छा आजकल आप लोग आपकी बात लोग भी सुनते हैं? हाँ बिल्कुल है, केतु की दशा है सर, केतु की दशा चल रही है उसमें गुरु नीच दशा में बैठा है, तो गुरु क्योंकि नीच दशा में है ऊपर से केतु की महादशा है, इसीलिए जिनको अपने भरण पोषण जिनका क्या है ये लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपका रीजन भी एक्सीडेंट होते हुए बच सकता है, हाँ देख लीजिए कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, भक्ति जो है वो सेकेंडरी है। तो कभी 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 फेस चलता है यार यार वाकई में तो कर्म ही चल रहे हैं तो सब कुछ। एक तो एक ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी को गए भाई ब्रह्मचारी का एस्ट्रोलॉजी के पास जाएगा ना एक सवाल पूछता है वो मेरी शादी होगी, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा मेरी शादी हो जाएगी। कहता है भैया तुम्हारा शुक्र इतना प्रबल है ना तुमको तो माला पहना के गोद उठा के ले जाएगी वो। अच्छा इतना बुरा है क्या मेरा हाल? कहता भाई शुक्र की दशा है भैया, अच्छे अच्छे निपट गए इसके अंदर, तुम किस खेत की मूली हो? कहते यार जब किसी ने मेरे को उठा के ले जाना तो मैं किसी को उठा के ले चलता हूं। तो कृष्णा विल टेस्ट आवर फेथ, यार क्या कृष्ण भक्ति से कर्म करते हैं? नहीं यार कर्म तो अब कट नहीं रहे मेरे, यार कर्म तो मेरे कट नहीं रहे। यार समटाइम वी सी कि अगर किसी का फेथ थोड़ा हिला हुआ है ना तो उसके हाथों में उंगलियों में अंगूठियां नजर आती हैं, पुखराज नीलम मोती गोमेद इतना लेके क्यों चैंटिंग करते हो आप जब माला भारी नहीं होती ज्यादा जब करते हुए इतनी सारी अंगूठियां पहन के? कहता प्रभु जी वो क्या वो तो भक्ति के लिए है ना, लेकिन हमारे सर्व कल्याण के लिए हमने पहन के रखे हुए ये बुखराज, मेरा गुरु कमजोर है ना, है ना इसीलिए ताकि मेरे शास्त्रों में थोड़ी रुचि आए इसलिए बुखराज पहनता हूँ मैं। अच्छा प्रभुपाद जी की कृपा से नहीं आएगा भागवतम आपको समझ में कि बुखराज से आएगा ये पत्थरों से आएगा? तो इसलिए कभी कभी कृष्णा विल एक्चुअली टेस्ट आवर फेथ। और हम देखते हैं कभी कभी भक्तों के जीवन में जो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट के हिसाब से उनका जीवन दिखता भी है, मतलब भाई यार बिल्कुल वैसे चल रहा है, लेकिन असल में वैसा नहीं चलता। विश्वाचार्य ठाकुर बोलते हैं कि ना भक्तों का जीवन जो उनके कर्म है ना वो बिल्कुल वैसे है कि अगर रस्सी हो और रस्सी को ना पेट्रोल से आप जला दो तो जो बस्ती है वो बिल्कुल रस्सी जैसी दिखती है, जो राख है ना काले रंग की वो बिल्कुल रस्सी जैसी थी, उसमें कॉयल्स नजर आ रही है, उसमें बिल्कुल कॉयल्स जैसी नजर आती है, लेकिन उस कॉयल के अंदर आप उंगली अगर डाल दो तो उसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता। उसी तरह से भक्तों के जीवन में नजर आता है कि ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के साथ से प्रभु जी मैं बता रहा हूँ आपका एक्सीडेंट होने वाला है, लग रहा है भाई कर्म के हिसाब से चल रहा है यार, कर्म अभी तक कटे नहीं भक्ति की वजह से, पर एक्सक्यूज मी, कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती, कर्मों की ग्रंथि का जो बंधन है उसको छिन्न भिन्न कर देती है भक्ति। या विश्वनाथ चंद्र बोल रहे हैं कि बिल्कुल वैसे जैसे रस्सी जल के राख हो गई है, लेकिन रस्सी दिखती जैसी बिल्कुल वैसी दिखती है। तो कर्म जैसे दिखते तो हैं लेकिन असल में वो कर्म होते नहीं है, तो भगवान सारे कर्मों को काट देते हैं। अब जो होगा भक्त के जीवन में, या तो होगा भगवान का आशीर्वाद या फिर होगा कुछ लर्निंग लेसन, भगवान कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो नजर आएगा शायद ये मेरे ना कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की वजह से चल रहा है, पर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं चल रहा, अब ये भगवान के लेसन चल रहे हैं, अब ये भगवान का जिम्नेजियम चल रहा है, अब ये भगवान की व्यायामशाला चल रही है जहां तुम्हारे डोले बनेंगे, डोले स्पिरिचुअल, डोले स्पिरिचुअल मसल। अगर हम चाहते हैं कि माया के द्वारा ना मसले जाए तो मसल अच्छे करने होंगे, तो ये मसल कहाँ बनते हैं, ये भगवान कृष्ण के जिम्नेजियम में बनते हैं जहाँ कठिनाइयाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि ब्रजवासियों के सामने चैलेंज आया, कितनी घनघोर बारिश हुई, चैलेंज, लेकिन सबने क्या किया था, कृष्ण की शरण ली। उस तरह से व्हाटएवर चैलेंजेस भी में हैं अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे और अपने डिपेंडेंस को पूरी तरह डिक्लेयर करेंगे दैट कृष्णा वी बिलोंग टू यू, दैट इज ट्रू इंडिपेंडेंस। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। वैसे तो 9:05 हो गए हैं, तो प्रश्न ले सकते हैं रोजी नहीं, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या है, ओके 5 मिनट, यस प्रभु। इसमें भगवान मिसिंग है, इसके अंदर भगवान की सर्वश्रेष्ठ स्थिति मिसिंग है। कर्म मीमांसा फिलोसफी के हिसाब से यह है कि अगर कर्म इतने प्रबल है कि भगवान भी इसका पालन करते हैं, जैसे कुछ लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण सिंह राशि में पैदा हुए थे, जो व्यक्ति सिंह राशि में होता है और हम देखते हैं शुक्र बड़ा प्रबल है, इसमें हम देखते हैं इस व्यक्ति की एक पत्नी नहीं हुई, 16,108 पत्नियां हुई, क्योंकि शुक्र की दशा बहुत ही प्रबल है। और देखते भगवान श्री कृष्ण के चार्ट में और क्या नजर आता है, भगवान श्री कृष्ण के चार्ट में हम देखते हैं कि राहु भी बड़ा प्रबल है, यानी कि इस व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहेंगे, हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहीं गोपियां रहेंगी। तो जो लोग कर्म मीमांसा फिलोसफी के अनुयायी होंगे साथ में क्या, भगवान भी यहाँ तक ही कर्मों को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन वेदांत में जो है भगवान श्री भगवान की स्थिति और ज्यादा सुंदर तरीके नजर आती है कि भगवान इज द कंट्रोलर ऑफ दिस लॉ, लॉ इज नॉट कंट्रोलिंग द लॉ मेकर, लॉ मेकर इज कंट्रोलिंग द लॉ। तो ये वेदांत में आता है, लेकिन कम से कम ये तो पता लग गया भाई मेरे ऊपर से ऊपर भी कुछ कंट्रोलिंग है, मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं मेरे कर्म, एक्शन रिएक्शन मेरे ऊपर है भाई, मैं इनका अनुगत हूँ, और फिर पता लगता है इनके भी ऊपर कोई है और वो है भगवान, दैट इज वेदांत। लेकिन कर्म मीमांसा फिलोसफी में पता लग जाता है आई एम नॉट द कंट्रोलर, द लॉ ऑफ कर्मा इज अबव मी। तो इसीलिए इसका भी एक एक पर्पस है शायद दर्शन ने कर्म मीमांसा फिलोसफी का, ठीक है। और किसी को प्रश्न है, यस सर, हरे कृष्ण। अब भाई सबने सुना सवाल है ना कि भाई अब ये तो सबके साथ भगवान जी शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त वाला देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी है ना वो कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। एक अमेरिकन लेडी थी, उसको पता लगा कि ना ब्रजवासियों की भक्ति बड़ी ऊंची होती है, तो अमेरिका से ट्रेवल करके आई वृंदावन में, किसी ब्रजवासी के घर में ठहरी, कहती है अच्छा आपका ऑल्टर कहाँ है, तो ऑल्टर में लेके ऑल्टर दिखा, वहां पर काली माँ हनुमान जी, ठीक है अब ये सब पड़े हुए देवी देवता, कहते हैं अच्छा बड़ा अच्छा ऑल्टर, कहते हैं और असली वाला ऑल्टर कहाँ है, तो असली ऑल्टर क्या, यही असली ऑल्टर है, कहते हैं असली ऑल्टर इतने राधा कृष्ण तो है नहीं, अरे क्या राधा कृष्ण, अरे वो तो लल्ला लाली, अरे लल्ला लाली को थोड़ी ना यहाँ रख देंगे, और वो हमारे बच्चे हैं, वो तो हमारे बच्चे हैं। तो ब्रजवासी जो होते हैं वो कृष्ण से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि आप ये हैं उसमें क्या भगवत तत्व को लेकर नहीं आते हो, अफोर्स वी कांट कॉपी इट कि भाई हम भी वैसा करें, तो उससे क्या फिर हमारी भक्ति बड़ी सस्ती हो जाती है, सहजिया हो जाती है। ऐसे हम एक व्यक्ति से मिले थे, वो एक घर परिवार में, तो बोलते हैं हमारे घर में जी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा, तो आप सारे नियम पालन करते होंगे ना, प्याज लहसुन वगैरह तो नहीं खाते होंगे ना, बहुत अच्छा नियमों का पालन करते। कहते नहीं नहीं हम तो सब खाते हैं ना, तो आप फिर ठाकुर जी को भूखे लगाते हो फिर आप लड्डू गोपाल को? कहता हूँ लड्डू गोपाल क्या है ना, अब तो बड़ा हो गया ना, सब खाता है। बड़ा हो गया तो सब खाता है। तो कोई इसको इमिटेट करेगा तो क्या करेगा, सहजिया आ जाएगा, सस्ता बना देगा भक्ति को, सहज बना देगा। तो इसीलिए लेकिन ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो ये सहजिया आजम लेवल पे नहीं है, उनका इतनी आत्मीयता है भगवान के साथ कि वो कृष्ण से इससे प्रेम नहीं करते कि कृष्ण परम भगवान है, वो इससे प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और इसीलिए वो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं। अगर हम में से किसी को कोई प्रूव कर दे शास्त्रों से कि भैरवनाथ जी जो है असल में वो परम भगवान है, तो होंगे भाई हु इज गॉड, भाई भैरवनाथ जी इज गॉड। अच्छा पता नहीं था शास्त्रों में लिखा है, तो दैट मीन्स नाउ आई शुड स्टार्ट वर्शिपिंग भैरवनाथ। तो इसलिए हम लोग इससे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि कृष्ण परम भगवान है, लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण की इससे पूजा करते हैं क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसलिए उनके लिए जो है भगवान वाले नारायण हैं, सूर्यदेव हैं, इनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हे नारायण हमारे कृष्ण की रक्षा करना, हे इंद्र वर्षा होगी तो ये जो भी अनाज उगेगा उससे हम कृष्ण के लिए भोग बनाएंगे, कृष्ण को खिलाएंगे। तो उनका ये प्रेम है, आत्मीयता है, इसीलिए जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बट एक्चुअली देवी देवताओं को परम नहीं मानते, वो इससे लेके चल रहे हैं इन सबसे जो कुछ मिलेगा ना वो कृष्ण के लिए। सो दे आर नॉट ऑब्सेस्ड बाय डेमिगॉड वर्शिप, दे आर ऑब्सेस्ड विद लव फॉर कृष्ण। जो वैकुंठवासी हैं वो सेल्फलेस हैं, इसलिए उनकी भक्ति बहुत ऊंची है। लेकिन जो गोलोकवासी हैं वो सेल्फ फॉरगेटफुल हैं, इनको होश ही नहीं है, इनको ये होश ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, ये वो ना कुछ नहीं। इवन मतलब माता यशोदा ने जब भगवान कृष्ण के मुख में देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा, तो इनको अरे कृष्ण भगवान ना, कृष्ण भाई कहती देखो इतना काम कर रही हूँ, इतना थक जाती हूँ, मैं लल्ला के मुंह में क्या कह देख रही हूँ मैं। इवन देन उनकी आत्मीयता इतनी गहरी है यशोदा मैया की, तो इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर वो एक्चुअली इट्स नॉट टिपिकल डेमिगॉड वर्शिप। उनकी दया बस हमको कृष्ण के लिए सब कुछ मिले और हम कृष्ण को खुश रखें, तो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। अच्छा और किसी को प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन क्या? ऐसी क्या किसी जगह अगर नई इमारत बनी होती है तो पुरानी इमारत को गिराना बड़ा जरूरी होता है। तो पुरानी इमारत का गिरना और फिर नई इमारत का बनना, ठीक है, बड़ा ही ना डिस्टर्बिंग फेज होता है, बड़ा डिस्टर्बिंग फेज है। पुरानी इमारत गिर रही है और हम अंदर से चरमरा रहे हैं, अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से दृढ़ता टूट रही है, भक्ति में लग रहा है यार भगवान से जो आकर्षण था मेरा शुरू शुरू में अब तो एकदम जीरो हो गया है। पर पुरानी बिल्डिंगों का गिरना जरूरी होता है अगर उस जगह पर नई बिल्डिंग बननी है। इसीलिए हर परिस्थिति में भले ही हमें ये फीलिंग आए कि मैं भगवान की बड़ी बड़ी फीलिंग्स आ रही हैं, या फीलिंग्स ना भी आए हमें करना चाहिए। और जितनी ज्यादा मेरे अंदर कम फीलिंग्स आ रही है भगवान के लिए उतने ज्यादा डेस्परेटली आई एम इन नीड ऑफ चैंटिंग। अगर मेरे में इच्छा हो रखी है ओनली 10%, दैट मीन्स मुझको 90% अब इन्वेस्ट करना है अपनी चैंटिंग के अंदर। तो जितना ज्यादा मैं भगवान से दूर होता फील कर रहा हूँ ना अपने आप को, यार मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया हूँ, भगवान में विश्वास मेरा उठ रहा है, दैट मीन्स नाउ आई शुड बी मोर डेस्परेट टू चैंट हरे कृष्ण। तो कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि हम भक्ति छोड़ दें, कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम दूध का खोया बनाएं। भक्ति का जो दूध है ना उसको खोया बनाओ, उसको खोमत देना, उसका खोया बनाना है, उसकी मलाई बनानी है, उसकी रबड़ी बनानी है। उसके लिए क्या है, गैस स्टोव पे रहना है, गैस स्टोव पे रहना है। गैस स्टोव पे रहने से क्या है, दूध उबलेगा लेकिन उबल उबल के ही उसकी रबड़ी बनेगी। और फिर ये रबड़ी हम कृष्ण को देंगे, है ना। तो इसलिए कठिनाइयां जब आती हैं, कठिनाई ऐसे आती हैं टू मेक अस स्ट्रांग, कठिनाई ऐसे नहीं आती सो दैट वी गो अवे फ्रॉम कृष्ण, कठिनाई ऐसे आई ताकि हम कृष्ण के और नजदीक जाएं और गिड़गिड़ाएं और भीख मांगें और दिल से प्रार्थनाएं करें, इसमें आती कठिनाइयां। तो क्योंकि इस सृष्टि में हर चीज का एक पर्पस है, तो कठिनाइयों का भी एक पर्पस है और कठिनाइयों का दुखों का एक ही पर्पस है कि हम भगवान कृष्ण के चरणों की ओर आ सकते हो। तो दिस इज द पर्पस ऑफ डिफिकल्टी। जब डिफिकल्टीज आए तो कृष्ण कह रहे हैं बेटा तेरी गाड़ी अभी दूसरे गियर पे है, चौथे गियर पे डाल, पांचवें गियर पे डाल। हम क्या करते हैं रिवर्स गियर डाल देते हैं। अरे तेरे को ड्राइविंग सीखा कितनी सिखाई, तेरे ड्राइविंग सीखी नहीं तुमने। जैसे कि जब जब स्लोप आता है ना तो लोग करते हैं हायर गियर पे डाल देते हैं, यार स्लोप आ गया ना तभी तो जाएगी गाड़ी ऊपर। तो भगवान कहते हैं बेटा तेरी गाड़ी ना बड़ी ना मैकेनिकल चल रही है, दूसरे गियर पे गाड़ी चला रहे हो तुम, ठीक है। पूरा क्लच वायर जो है तुमने खराब करके रखी हुई, दूसरे गियर पे गाड़ी चला चला के, चौथे गियर पे गाड़ी डाल, चौथे गियर पे डाल। पर भगवान इतना लुब्रिकेंट नहीं है, अरे मैं दूंगा ना तेरे को, जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो दूंगा। क्यों चिंता करता है, मेरी LIC पॉलिसी ना, क्यों चिंता करता है, चौथे गियर पे गाड़ी डाल, चौथे गियर पे डाल। तो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं जब डिफिकल्टीज आए तो हायर गियर पे गाड़ी चलानी है और जबरदस्त तरीके से चलानी है, बिना ठोगाई करते हुए, बिना वैष्णव प्राप्त करते हुए, ठीक है। श्री लघुपाल की जय, श्रीमद भागवतम की जय, जय गोप्रमनंदे हरि हरि बोल।